देव भगवान श्री महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की साधु के जीवन में 22 प्रकार के कष्ट आते हैं जिनको शास्त्रों में परिषह कहा गया है। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। तत्वार्थ सूत्र जी के नवम अध्याय में 22 परिषहों का उल्लेख है और वास्तव में आप लोगों की बातों को सुनकर जो जो अतिशयोक्तियां आपने की हैं यहां पर ऐसा लगा कि वास्तव में ये सत्कार पुरस्कार भी एक जबरदस्त कष्ट है। लेकिन फिर भी इस कष्ट को भी जीतना अपना कर्तव्य है और तत्व दृष्टि से कष्टों को जीता जाता है और वही एक अभ्यास है, एक साधना है। ऐसा मन में विचार आया कि ये लोग सब जो मन में आ रहा है सो बोलते चले जा रहे हैं, कोई लगाम तो है नहीं। ठीक है, पर वास्तविकता इससे भिन्न है। किसी के कहने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता और किसी की निंदा करने से कोई नीचा भी नहीं हो जाता। जो है सो है, हमारा परिचय आप लोग क्या देंगे? हमारा वास्तविक परिचय तो हमारे गुरुजी जानते हैं। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। ये पंक्ति भी गुरुओं के मुख से सुनी हुई पंक्ति है और यहां उधार लेकर के आपके सामने सुना दी गई है। हम तो अपने आप को एक बालक से अधिक नहीं समझते। वास्तव में हमारी स्थिति बिल्कुल बालक के समान है। अभी विद्यार्थी जीवन ही चल रहा है और ज्ञान जहां हासिल होता है वहां अपना प्रयास चलता रहता है। थोड़ा बहुत बांट लेते हैं क्योंकि धर्म के प्रति जिसको बहुमान है उसके अंदर एक धर्म स्नेह स्वाभाविक रूप से उमड़ता है और आप लोगों की रुचि देखकर कुछ थोड़ा बहुत आपके सामने चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में भी साध्वी श्री जी ने जो कहा कि गंगा यानी सरिता बहती है लेकिन यदि प्यासा व्यक्ति उसके निकट आकर जलपान न करे तो प्यासा ही रह जाता है। ठीक बात है, ये भी एक प्रवाह है और आप सब जानते ही हैं। कई लोगों के मन में एक आशंका भी बैठी हुई है कि अब तो थोड़े दिन रह गए, क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इसकी चिंता न करते हुए वर्तमान कर्तव्य क्या है इस पर यदि ध्यान दे तो जितना समय है उसका भी सदुपयोग हो सकता है। बच्चों ने अपने अपने ढंग से ब्रह्मचारी जी के मार्ग निर्देशन में कई चीजें सुनाई और संध्या काल में जब बाल सभा लगती है तो वहां भी कई चीजें उनको मिलती है और उनसे भी कई चीजें हमें मिलती है। ऐसा मत सोचना कि यहां सिर्फ एक तरफा काम चल रहा हो। ये तो आचार्य उमा स्वामी महाराज बहुत पहले कह गए, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। सबका आपस में एक दूसरे के प्रति उपकार है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी क्यों ना हो, सबका परस्पर में एक अनुग्रह है। बड़ों का अपने ढंग का अनुग्रह है, छोटों का अपने ढंग का है। बस इसमें बड़प्पन का भाव जब प्राणी के हृदय में आ जाता है, मैं बड़ा और ये छोटा, तब वातावरण में विषैलापन पैदा हो जाता है। कौन बड़ा कौन छोटा, तत्व दृष्टि से अपन विचार करो, अपन कौन है। कोई कह सकता है कि हम जैन हैं, कोई कह सकता है कि हम वैष्णव हैं, कोई कह सकता है हम शैव हैं, कोई सांख्य, कोई बौद्ध आदि। लेकिन वास्तव में विचार करो, जब आपका जन्म हुआ था तब क्या ये सब थे आप? जब जन्म हुआ था तब कोई नाम भी नहीं था। था क्या नाम? अपने आचार्य श्री भी जब मनुष्य पर्याय धारण करके जन्मे थे तब विद्याधर नहीं थे। विद्याधर तो बाद में रखा गया नाम, और विद्यासागर नाम भी गुरु द्वारा प्रदत्त नाम है। तो उस स्थिति को याद करिए कि जब अपन आए यहां इस पर्याय में, और फिर इस पर्याय का अपन ने उद्घाटन किया। आए तो और पहले थे, पर काफी समय तक तो मां के गर्भ में रहना पड़ा, और उसके बाद फिर जन्म हुआ। उस समय अपन क्या थे? उस समय न जैन न अजैन, न मनुष्य न पशु, कुछ भी तो नहीं। माने क्लियर एक ब्लैंक अवस्था थी, कोरी स्लेट के समान अपन आए हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे ये सारे आइडेंटिफिकेशंस, परिचय पत्र बाद में प्राप्त होते हैं। आपको बात समझ में आ रही है ना? जन्म के समय कोई परिचय पत्र नहीं था, लेकिन बाद में सब परिचय पत्र आ गए। और जो प्रारंभिक गुरु मिले वो भी वितराग गुरु नहीं थे, रागी गुरु थे। तो उनने भी अपने ढंग से शिक्षा दी, उनने भी वही परिचय दिया जो उनके पास था। बच्चा मां मां बोलने सीख जाता है, पापा भी बोलता है, भाई भी बोलता, भैया बोलता है, सब धीरे धीरे ये सब संस्कार उस पर अंकित होते हैं। फिर मां के हाथ से किसी दूसरे के हाथ में जाता है तो चिल्लाता है, फिर मां ले लेती है चुप हो जाता है। धीरे धीरे अपने परिवार को भी पहचान जाता है, और बस जैसे ही ये सब परिचय वाला सिलसिला आता है तो जीवन बदल जाता है। पहले जो बिल्कुल निश्चिंत जीवन था उसमें अब विभाजन उत्पन्न हो गया। ये अपना परिवार और ये दूसरे। देखो उस छोटे बच्चे के कोमल हृदय में ये बात आ गई। पहले तो कोई भी उठा ले, आया उठा ले तो भी ठीक है, और मां उठा ले तो भी ठीक है, पिता उठा ले तो भी ठीक है, लेकिन अब विभाजन आ गया। और फिर जैसे जैसे उसके प्रारंभिक गुरु उसको प्रशिक्षण देते जाते हैं वैसे वैसे वो संस्कारित होता है। बल्कि ये कहना चाहिए कि जन्म के पहले भी बच्चे पर संस्कार पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से रहते हैं, बाद में प्रकट होते हैं। लोक में प्रसिद्ध महाभारत कथा में अभिमन्यु का दृष्टांत आता है कि सुभद्रा मां अर्जुन के मुख से कुछ सुन रही थी, सुनते सुनते नींद लग गई। वो गर्भ का बालक अभिमन्यु जागृत था सो वो सुनने लगा। तो अर्जुन चक्रव्यूह का चित्रण करते गए, कैसे प्रवेश करना चक्रव्यूह में, पूरा वर्णन किया। और निकलने का जब वर्णन करने वाले थे तो सुभद्रा मां की नींद खुल गई और अभिमन्यु उस बात को नहीं सीख पाया। इसीलिए उस भयंकर महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह का भेदन करने वाला एकमात्र नौजवान योद्धा अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु था। भेदन करके उसने कौरवों के हौसले ठंडे कर दिए। सब लोग चिंता में पड़ गए कि ये कौन है, अकेला लड़ता रहा। लेकिन फिर अनीतिपूर्ण ढंग से उसका वध किया गया, वो वापस बाहर नहीं आ सका। ऐसी एक दक्षिण भारत की रानी मंदालसा की कथा आती है, जिसके 7 पुत्र हुए लेकिन एक भी पुत्र संसार में नहीं फंसा। सब के सब चले गए, सन्यास अंगीकार करके तपस्वी बन गए। तब जो सास थी उसको चिंता हुई कि क्या बात है, सारे पुत्र एक ही रास्ते पर जाते हैं, क्या कारण है। फिर वो समझ गई कि ये कुछ ऐसे संस्कार डालती है कि बस वो संस्कार जम जाते हैं बच्चों पर। तो फिर उसने निवेदन किया कि महारानी जी, सासू होने के नाते मैं आपसे कहती हूं कि अब जो बालक हो उसे आप राजा बनाओ, क्योंकि जितने बालक तपस्वी बन रहे हैं वो आप ही तपस्वी बना रही हो सबको, कोई दूसरा नहीं बना रहा, आप ही बना रही हो। मंदालसा रानी समझ गई कि बात पकड़ ली है इनने। फिर उसने एक प्रशस्त राजा के संस्कार आगामी बालक पर डाले और फिर वो राजा बना। न्यायपूर्ण जीवन उसका व्यतीत हुआ, प्रजा का भी अच्छे ढंग से पालन किया, क्योंकि मां के संस्कार बड़े जबरदस्त थे। और सुना जाता है कि उस अंतिम पुत्र के गले में उसने एक लॉकेट माने एक ताबीज बांधा था और उस पुत्र से कहा था थोड़ा गंभीर दृष्टांत है इसलिए सन्नाटा अच्छा रहेगा, मां ने उस बालक के गले में एक कागज पर कुछ लिख दिया और उससे कहा कि इसको कभी मत खोलना, पर जब तुम्हारी जान खतरे में हो तब एक बार इसको जरूर खोल के देख लेना। जब तुम्हें कहीं कुछ नजर ना आए, जब बिल्कुल तुम हताश हो जाओ, तब तुम इसको जरूर खोल के एक बार देख लेना। और मां ने यह भी नहीं बताया कि तुम्हारे बड़े भाई कौन थे, क्या था, तुम्हारा परिवार कैसा रहा, तुम्हारे दादा परदादा कौन थे, कोई परिचय नहीं दिया। सिर्फ संस्कारित करके एक अच्छा बढ़िया राजा बना दिया अपने पुत्र को। और मंदालसा आध्यात्मिक गीतिका माने 8-10 छंदों की एक कविता है संस्कृत भाषा में, जो मां बच्चों को सुनाया करती थी जब वो पालने में झूलते थे। झुलाते झुलाते बच्चे की चेष्टा देख करके वो वैसे श्लोक संस्कृत में गाती थी लोरियों के रूप में। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसी शरीर भिन्नस्त्यज सर्वचेष्टाम् मंदालसा वाक्यमुपास्व पुत्र। हे पुत्र, तू अपनी मां मंदालसा के वाक्य की उपासना कर। तू शुद्ध स्वरूपी है, यानी आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है वह अनादिकाल से कर्म बंधन होने पर भी आज तक कभी अचेतन के रूप में परिणत नहीं हुआ। चैतन्य हमेशा चैतन्य ही रहता है। बुद्धों सी तू ज्ञानवान है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न। बोधतिस्म इति बुद्ध, जिसने जान लिया वो बुद्ध कहलाता है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, अंजन से भी तू रहित है। संसार माया परिवर्जितोसी, संसार की माया से भी तू वर्जित अर्थात शून्य है, रहित है। तेरा स्वरूप संसार की माया रूप नहीं है। शरीर भिन्न, तू इस शरीर से भी जुदा है, इसलिए त्यज सर्व चेष्टा, ये सारी प्रवृत्तियां छोड़ दे। तू कहते हैं कि वो जब लोरियां गाती थी तो बच्चा एकदम ऐसे बैठ जाता था जैसे कि कोई मुनि महाराज ध्यान में बैठे हों। दक्षिण भारत की रानी मंदालसा की कथा है। लेकिन अंतिम पुत्र को दूसरे संस्कार डाले, राजा बना। एक बार युद्ध में प्राण संकट आ गए और चारों तरफ से संकट ही संकट, कोई विजय की निशानी नहीं बची। लगा कि अब आयु पूर्ण होने को है, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। अचानक मां की बात याद आती है कि मां ने कहा था कि जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो इसको जरूर देख लेना। वो तावीज को पहली बार खोलता है अपने जीवन में। आज्ञाकारी पुत्र था ना, कोई दूसरा पुत्र होता तो देख लेता रात में कहीं छुप के कि क्या लिखा है, अभी छुपा क्यों रही मां। लेकिन आज्ञाकारी पुत्र था तो उस अवसर पर उसने खोला। अंदर कागज पर लिखा था कि हे पुत्र, तेरे सात भाई दीक्षा लेकर आत्मकल्याण में लग गए, तू कहां पड़ा है। उसको आंसू आ जाते हैं। उसको लगता है कि मैं राजपाट के पीछे युद्ध लड़ रहा हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं। राजा के कर्तव्य की दृष्टि से जो कर रहा हूं सो ठीक है, लेकिन मनुष्य पर्याय जो मुझे मिली उसका क्या उद्देश्य था। राजा बनकर के नाम कमाना या और कुछ करना? नहीं, ये मनुष्य पर्याय दूसरे कामों के लिए नहीं है। और जो इस पर्याय का दूसरे कामों में उपयोग करते हैं वे वास्तव में इस पर्याय का दुरुपयोग करते हैं। कोई परिवार का विस्तार करने में अपना मनुष्य जीवन खपा डालते हैं, कोई मकान दुकान जायदाद की वृद्धि में ही अपना सारा पुरुषार्थ उंडेल देते हैं और अंत में वृद्धावस्था में बिल्कुल शिथिल पड़ जाते हैं। मनोकामनाएं तब भी अधूरी रह जाती है। कोई अभिनेता बन जाते हैं, वैसे ही अभिनेता है, सब लोग अभिनेता, लेकिन अभिनेता में भी और डबल अभिनेता बन जाते हैं। फिल्म लाइन में चले जाते हैं या फिर नाटक आदि में चले जाते हैं और उसी में अपना जीवन लगा देते हैं। दूसरों को भी ट्रेनिंग देते हैं कि परंपरा तो चलनी चाहिए ना। जिस प्रकार पैसा कमाने वाले अपनी परंपरा चलाते हैं, बेटों पर भी वही संस्कार डालते हैं कि भाई ऐसे कमाया जाता है, उसी प्रकार ये सारी परंपराएं तो चली रही है संसार में। संसार की परंपरा तो आज तक कोई रोक नहीं पाया। बड़े बड़े महापुरुष भी, आदिनाथ भगवान और बाकी तीर्थंकर भी जो हो गए बड़े बड़े, राम आदि जो महापुरुष हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम, हनुमान जैसे वीर, पांडव जैसे बलशाली और अन्य भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज पुरुष हुए इस धरती पर, लेकिन फिर भी संसार की धारा को कोई मोड़ नहीं सका। आए चले गए, लेकिन आज तक वही नाटक चल रहा है जो अनादि काल के पूर्व चलता रहा। ये संसार एक ऐसा रंगमंच है, एक ऐसा जबरदस्त थिएटर है कि यहां पात्र तो हमेशा बदलते चले जाते हैं, लेकिन नाटक वही का वही चलता रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, ये वही चल रहा है पूरा। मेरा तेरा, मैं तू, ये सब कोई नवीन वस्तुएं नहीं है। तो बात यह है कि ऐसा संयोग आपको मिल गया, ये भी एक संयोग की बात थी। और इसमें जो कुछ प्रवाह में आ गया सो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया, क्योंकि कोई ऐसी तैयारी करके हम बोलते नहीं, जो आ जाता है सो आ जाता है। वास्तव में सब गुरु महाराज की कृपा है। और इसमें कई बार वचनों में स्खलन भी हो जाता है, क्योंकि अब वैसे ही बोलते चले जा रहे हैं अपनी भाषा में, कोई उसको संभाल कर तो बोल नहीं रहे हैं, तो त्रुटियां भी हो जाती हैं। कभी कोई बात किसी को लग भी जाए, कभी किसी को दर्द भी हो सकता है। जैसे तंबाकू की बुराइयों का वर्णन किया, तंबाकू वालों को दर्द हुआ होगा। तो ये सारे उतार चढ़ाव रहे इतने दिनों में, और निष्ठापन का समय अब निकट है, और वर्षा योग का जो काल निर्धारित है उसका ये अंतिम रविवार है। पर लंबी सांस मत लो, ये तो समय के प्रवाह को तो हम क्या, कोई तीर्थंकर भी नहीं रोक सका, समय को कौन रोक सकता है। लेकिन हां, अपने जीवन को गलत दिशा से व्यक्ति रोक सकता है और सही दिशा की ओर मोड़ सकता है। दिशा सही हो जाती है तो एक न एक दिन अपनी दशा भी सही हो जाती है, वरना गलत दिशा में जितने भी कदम बढ़ाओगे मंजिल नहीं मिलने वाली। तो उस ताबीज का रहस्य तो आपके सामने खुल गया, लेकिन आपके अपने जीवन का रहस्य अब तक रहस्य ही है। क्या आप में से कोई भी बता सकता है कि मैंने क्यों जन्म लिया, मेरे मनुष्य होने का क्या उद्देश्य था? उस दौड़ में आप ऐसे जुट गए कि सब कुछ भूल गए। मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए कितनी कीमत चुकाई थी वो भी शायद ही आपको किसी को याद हो। कितनी कठिनाई से ये मनुष्य जन्म मिला था, कोई होश नहीं रहा, और यहां आकर के एक ऐसी अंधी दौड़, गोट बैटालियन बोलते हैं, भेड़िया धसान, जो सब कर रहे हैं दुनिया में बस वही तो मेरा कर्तव्य है, ऐसी एक धारणा आपके अंदर बन गई और उसके कारण इस मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य से प्रायः वंचित रह गए। कुछ बातें धर्म की बातें सुनने को मिली, कुछ जीवन में थोड़ा बहुत हल्का सा मोड़ भी कुछ लोगों के आया, लेकिन तो भी अब आगे आप समझ रहे हैं कि वास्तविक मोड़ तो उसी को कहा जा सकता है कि जब अंतरंग में एक क्रांति आ जाए। ऐसा नहीं कि भाई जितना धर्म कर रहे हैं सो बस उतना ही काफी है, धर्म के विषय में संतुष्ट होना गलत बात है कि लोग सोचते हैं कि चलो हमने आज सवेरे उठकर के नमोकार मंत्र पढ़ लिया या फिर और कुछ कर लिया बहुत बड़ी बात है, माने थोड़ा सा कुछ करके सामान्य मनुष्य सोचता है कि हमने बहुत कर लिया, जबकि आप विचार करके देखिए 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर आप एक घंटे पूर्व दिशा की ओर चलो और 23 घंटे पश्चिम दिशा की ओर चलो तो कहां पहुंचोगे? आप लोग समझदार हैं, बात तो समझ में आ रही है ना। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को धर्म की तरफ मोड़ो और बाकी समय एक बड़ी बड़ी विचित्र धारणाएं संसारी प्राणी के अंदर बैठी रहती हैं। वो सोचता है कि मंदिर तो धर्म का स्थान है, यहां पर अपने को धर्म करना, और बाहर चाहे कुछ भी करते रहो, बाहर तो कोई प्रतिबंध है नहीं। वास्तव में ये धर्म सभा ये तो थ्योरी की क्लास है, प्रैक्टिकल जो लेबोरेटरी है वो बाहर है, प्रयोगशाला जो है ना वो बाहर है, यहां की जो थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल आपको वहां करना है बाहर। ऐसा नहीं कि यहां की बात सुनी और बाहर गए कपड़े झड़ाए और फिर निकल गए और फिर जहां के तहां। धर्म इतनी सस्ती वस्तु नहीं है कि जिसको झड़ा दिया जाए, धर्म तो वो वस्तु है कि जो आपके अनादि कर्म बंधन को झड़ा दे। धर्म कोई झड़ाने वाली वस्तु नहीं है, संसार में चाहे बड़े से बड़ा वैज्ञानिक कुछ भी कर ले, कोई भी कुछ भी कर ले, चाहे धनी हो या बुद्धि संपन्न हो, कोई भी हो, लेकिन धर्म की शरण में आए बिना किसी को शांति के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। ये एक अटल सत्य है। वो धर्म क्या है? अपने अंतस की जो पवित्रता है उसी का नाम वास्तव में धर्म है। धर्म न तो किताबों में है, न किसी कमरे में है, न किसी के पास पुड़िया में बंद है। धर्म तो अपने अंतरंग की पवित्रता का नाम है, और वह पवित्रता किसमें मिलेगी? जो धर्मात्मा है उसी में मिलेगी। इसलिए इस धर्म को अपनाने का उपदेश संतों ने दिया है, और जैन शास्त्र तो कहते हैं कि तुम अजमा कर देख लो, जो बात यहां लिखी है उस पर प्रयोग करके देख लो, अगर सही बन जचे तो ले लो, न जचे तो हमें वापस कर दो, छोड़ दो। क्या ऐसी निष्पक्ष बात कहीं दुनिया में मिलेगी? सारी दुनिया चाहती है कि हमसे लोग प्रभावित हो, हमारा समूह बढ़े, लेकिन यहां एक निराली बात है। यहां तो ऐसा कहा जा रहा है कि तुम्हें सौदा पटे तो लो, न पटे तो और घूम आओ थोड़ा। संसार तो ही अनादि से, अभी 84 लाख योनियां हुई है, और एक बार एक राउंड और लगा लो, देख लो कहीं मिल जाए तो। अंततः संसारी प्राणी को धर्म की शरण में ही आना पड़ता है, तभी जाकर उसका उद्धार हो पाता है। प्रयोग तो सब लोग करते ही रहते हैं, इतना सब सुनने के बाद भी आज इतवार को टीवी कौन छोड़ेगा, क्योंकि ऐसा प्रबल आकर्षण है सांसारिक सुखों का कि सब कुछ सुनते हुए, जानते हुए, समझते हुए संभल नहीं पाते। संभलने के लिए इसीलिए भारतीय संस्कृति कहती है कि भाई अगर तुम नहीं संभल पा रहे हो तो किसी का सहारा लो, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन यहां तो बहुत जबरदस्त नाव है, आचार्य विद्यासागर महाराज नेमावर में कितनी जबरदस्त नौका है। पर फिर भी मन कहता है कि हां ये जो कुछ कह रहे हैं महाराज श्री तो ठीक है, लेकिन बस वही लेकिन, बट इफ किंतु परंतु, इसी में तो संसारी प्राणी मार खा जाता है। सब कुछ ठीक है लेकिन बस इतने में तो पूरा काम बिगड़ जाता है। जैसे किसी कवि ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई और उसके बाद में आभार प्रदर्शन करते समय किसी ने कह दिया कि आपने इतनी बढ़िया कविताएं सुनाई कि हमने तो जीवन में ऐसी कविताएं पहली बार सुनी, लेकिन अब बताइए। वो उतना लेकिन ही पर्याप्त है, सब एक घंटे तारीफ कर दो और आधे सेकंड में लेकिन बोल दो तो वो पूरी तारीफ जो है ना एक तरफ धरी रह जाती है। चौमासा हुआ, उपदेश मिले, सब कुछ सुना समझा, जो कुछ करना था किया, लेकिन बस इस लेकिन को अगर आप इस मनुष्य जीवन में हटा सके तो ये जीवन सार्थक हो सकता है, वरना लेकिन 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 में बहुत से प्राणी आए और चले गए। एक दिन अपन भी चले जाएंगे, अपन यानी हम आप सब, आप बिहार के बारे में ज्यादा सोचते हो है ना